ओम शांति। आज का सुंदर विषय स्मृति स्वरूप अनुभूति स्वरूप बन, तीव्र गति से अपने तमोगुणी संस्कारों का परिवर्तन कर कैसे पास विथ ओनर बने, इस विषय की शुरुआत करने से पहले हम एक श्रेष्ठ शक्तिशाली अनुभव में बैठते हैं। एक मिनट के लिए बिल्कुल पावरफुल संकल्प, और कोई संकल्प नहीं, केवल अनुभूति में बैठना है कि मैं मस्तक के मध्य एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, इसी अनुभूति में बैठ जाए। ओम शांति। वर्तमान समय अनुभव की स्टेज श्रेष्ठ स्टेज है। जो आत्माएं अनुभव में रहती है, फीलिंग में रहती है, ईश्वरीय नशे में रहती है, श्रेष्ठ स्वमान में रहती है, उसके तमोगुणी स्वभाव संस्कार तीव्र गति से परिवर्तन होने लगते हैं। जब हमारे संस्कार सत्वप्रधान बनेंगे तभी ये संसार श्रेष्ठ बनेगा, और उसका आधार क्या है? अनुभव। और अनुभव का आधार क्या है? चिंतन। एक बहुत अच्छे सेंटेंस आपको सुनाना चाहता हूं, जो इस संगम युग पर जिनको अपनी स्थिति महान बनानी है, पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, तो वर्तमान समय की मांग है कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव मूरत बनकर रहना। अनुभव किस बात का? जो योगी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान ईश्वरीय नशे में रहती है, परम आनंद के रस में मगन रहती है, जिसकी चेतना इस संसार से, देह से और देह के संबंधों से अलग दुनिया में खोई हुई रहती है, वो आत्माएं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में विश्व कल्याण के कार्य में महान भूमिका निभाती है। बहुत गहरा मनोविज्ञान है। गीता में भी ये बात आती है कि हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी आत्मा तो अति प्रिय है, लेकिन योगी तुझैसा मेरा ही स्वरूप है। खो जाए इस चिंतन में कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा सर्वशक्तिवान, हम आत्माएं भी मास्टर सर्वशक्तिवान। सबसे बड़ा स्वमान, नशा, फीलिंग, जो आत्माएं इस फीलिंग में रहती है, अनुभूति में रहती है, उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती है। और जिसकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है, उसका प्रभा मंडल बड़ा होने लगता है, उसका ओरा, उसकी हीलिंग पावर, उसका सरकमफेरेंस कई गुना बड़ा होने लगता है। सारा विश्व परिवर्तन का आधार हमारी अनुभूति में है। हम क्या अनुभव करते हैं? अगर हम सांसारिक चीजों का अनुभव करते हैं, आंखों से, कानों से, मुख से, संकल्पों से, तो ये बंधन बांधता है। इन सभी बंधनों को कट करने के लिए एक ही रस में जो आत्मा मगन रहती है, एक ही अनुभव में, एक ही फीलिंग में जो आत्मा मगन रहती है, और वो फीलिंग है परम आनंद का रस, ईश्वरीय रस, स्वमान का रस, ये अनुभूति सब बंधनों को काट देती है। आज का भी एक कर्मातीत बनने का आपने महावाक्य सुने होंगे, संपन्न और कर्मातीत बनने के लिए, कि जो आत्मा सदा शुभ चिंतन करती है, श्रेष्ठ चिंतन करती है, शुभ कामना रखती है, वही आत्मा कर्मातीत बन सकती है, वही आत्मा बाप समान बन सकती है, वही आत्मा नेक्स्ट टू गॉड बन सकती है। बहुत सुंदर रहस्य है इसमें। चिंतन, जैसा हमारा चिंतन वैसी हमारी फीलिंग। एक सिक्वेशंस नोट कर लें आप कि मेरा जैसा चिंतन होगा, चिंतन यानी संकल्प, जैसा चिंतन, जैसा संकल्प, वैसी फीलिंग्स, वैसी अनुभूति, वैसी डेस्टिनी, वैसा ही मेरा संस्कार, और वैसा ही मेरा भविष्य संसार। हम किस फीलिंग में रहते हैं, किस अनुभूति में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। बाबा आया है हमें राजाओं का राजा बनाने। आज भी बाबा ने कहा ना, ऊंचते ऊंच बाप, उसकी पालना भी ऊंचते ऊंच और पद भी ऊंचते ऊंच। इसका गहरा मनोविज्ञान क्या है? ज्ञानी तो हम सभी हैं, लेकिन अधिकांश भाई बहन से जब चर्चा होती है तो ज्ञान का हम केवल सिमरण करते हैं, उसका रिपीटेशंस करते हैं, सोचते हैं, हम सोचता स्वरूप ज्यादा रहते हैं। जब भी हम योग में बैठते हैं तो अधिकांश भाई बहन अपने अंदर ही मन से विचार करते रहते, सोचते रहते हैं, अपने को कमेंट ही देते रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और ये करते करते ही पूरा टाइम पास कर देते हैं। और फिर जब योग से उठते हैं तो नो चेंज, संस्कार वही के वही, संस्कार परिवर्तन नहीं होते, खुशी का अनुभव नहीं होता है, चार्जिंग का अनुभव नहीं होता है। योग यानी परमात्म मिलन, महान आत्मा से मिलन, परम आत्मा से मिलन। दुनिया में भी अगर हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो मिलने की कितनी खुशी रहती है, प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं तो कितनी खुशी रहती है। और यहां हमारा मिलन किसके साथ? आत्मा का, परमात्मा के साथ। तो हमें कितनी परम आनंद की खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो खुशी क्यों नहीं होती है? संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं? स्वभाव परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं? कि हम सोचता स्वरूप स्टेज में ज्यादा रहते हैं, अनुभूति में कम। क्या बेसिक डिफरेंस है सोचता स्वरूप अनुभूति स्वरूप में? हमारी योग की चार अवस्थाएं हैं। पहली है मनन चिंतन, दूसरी है कन्वर्सेशंस विथ गॉड रूह रिहान, तीसरी है कंसेंट्रेशन एकाग्रता, और चौथी है अनुभूति। ये चौथी योग की परम स्टेज है। मनन चिंतन रूह रिहान में हमारा मन का यूज ज्यादा होता है, मन से हम अनेक तरह के श्रेष्ठ विचार करते रहते हैं, बुद्धि उसका मंथन करती रहती है, इससे बुद्धि थोड़ी प्योर होती जाती है। जितनी बुद्धि हमारी पवित्र होती जाएगी तो तीसरी स्टेज आती है हमारी एकाग्रता, कंसेंट्रेशन। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन मींस जो मन हमारा संकल्प करे, बुद्धि उसके ऊपर थोड़े समय के लिए ठहर जाए, उसका अनुभव करने लगे। इसके लिए हमारे मन में धैर्यता बहुत चाहिए। अगर हमारा मन नॉन स्टॉप संकल्प करता जाता है तो आप अनुभव की अवस्था से दूर होते जाते हैं। हम निरंतर अपने को थॉट्स देते रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, ये अपने को बार बार याद दिलाते हैं। मन ये चिंतन किसको दे रहा है? बुद्धि को। लेकिन अगर हम निरंतर ये कमांड बुद्धि को देते रहेंगे तो बुद्धि वो अनुभव की स्टेज में टिक नहीं पाएगी। हमारे मन बुद्धि के जो फंक्शन है, एट ए टाइम या तो मन विचार कर ले या बुद्धि अपना काम कर ले, दोनों में से एक ही समय एक ही शक्ति कार्य कर सकती है। अगर हम निरंतर मन के द्वारा बुद्धि को विचार देते रहते हैं तो बुद्धि उस पर कार्य कर ही नहीं पाती है। बुद्धि का कार्य क्या है? बहुत फंक्शन है बुद्धि के, एनालिसिस करना, राइट रोंग का निर्णय करना, महसूस करना, अनुभव करना, ये सारे बुद्धि के काम है। और वर्तमान समय संगम पर आकर के बाबा हमारी बुद्धि का ताला अभी खोलता है। इसी समय संगम युग पर ही ये परमात्म बैंक खुलती है और इसी समय हम बुद्धि रूपी अनुभव के द्वारा जितना खजाना जमा करना चाहें उतना खजाना जमा कर सकते हैं। इसका आधार है दिव्य बुद्धि, इसका आधार है अनुभूतियां। तो एकाग्रता में हम क्या करते हैं कि जब बुद्धि हमारी दिव्य बन जाती है, मनन चिंतन रू रियान करते करते, तब हमारे मन में ठहराव आ जाता है, धैर्यता आ जाती है, अर्थात हमारे मन से नंबर ऑफ थॉट्स कम क्रिएट होने लगते हैं और बुद्धि उसका अनुभव करने लगती है। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन मीन्स वेयर योर माइंड विथ योर इंटेलेक्ट वर्क टूगेदर एट ए टाइम ऑन वन थॉट्स, दैट इज कंसेंट्रेशन।
तुम्हें आना है, धाम में तुम्हें कलयुग में अब तुम्हें आना है,
एकाग्रता का अर्थ है एक ही संकल्प पर बुद्धि लंबे समय तक टिक जाए, तभी हमारे संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। जितना हम श्रेष्ठ चिंतन बुद्धि को देते जाएंगे, उतनी बुद्धि पवित्र पारस दिव्य बनती जाएगी, और जितनी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, मन बुद्धि की प्योरिटी के अनुसार धीरे धीरे शांत होता जाएगा। जितना हमारा मन शांत होगा, उतना हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएगी, और ये आंतरिक शक्तियां आपको भरपूरता का अनुभव कराएगी, खुशी का अनुभव कराएगी। जितने आपके अंदर आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाएगी, उतना आप इस देह की दुनिया, देह के पदार्थों से चेतना ऊपर उठती जाएगी। आपकी एंजेलिक स्टेज, फरिश्ता स्टेज स्वतः ही अनुभव होने लगेगी। तो कंसेंट्रेशन में हमारे मन और बुद्धि, मन विचार करता है और बुद्धि विचारों के अनुसार अनुभव करती है, लेकिन चौथी जो स्टेज होती है हमारी अनुभूति की स्टेज, एक्सपीरियंस, वो स्टेज एक पावरफुल स्टेज होती है जिसमें हम कम समय में ही अपने स्वभाव संस्कारों का तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं। वो अनुभूति की स्टेज में जब बुद्धि हमारी परफेक्ट हो जाती है, बुद्धि के अंदर कंप्लीट समृद्धि जागृत हो जाती है कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, एक तरह से बुद्धि के अंदर उसका स्वरूप, एम्बॉडीमेंट, वो स्वरूप बनने लगता है। अनुभूति की स्टेज में मन की भूमिका बहुत कम रहती है, और अनुभूति की स्टेज में बुद्धि की भूमिका ज्यादा रहती है। जब बुद्धि में परफेक्शन आ जाता है, सामर्थ्य आ जाती है, पॉजिटिवनेस आ जाती है कि मैं कौन, मेरा कौन, तो वो आत्मा उसी फीलिंग में रहने लगती है कि जो मैं हूं, मैं कौन, मैं लाइट माइट आत्मा हूं। जैसे आपको नेचुरली देह का भान रहता है ना, आप अपने को याद दिलाते हैं, नेचुरल वो उसका स्वरूप रहता है कि मैं फलाना हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, उसमें मन की कोई भूमिका नहीं रहती है, उसका हम स्वरूप बने हुए रहते हैं। ऐसी अनुभूति की जो स्टेज है उसमें मन की भूमिका न के बराबर होती है। जो मैं हूं उसका स्वरूप, उसकी अनुभूति प्रैक्टिकल चाल चलन में दिखाई देने लगती है, प्रैक्टिकल वो जीवन बन जाता है, उसके नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, लास्ट दिनों में ब्रह्मा बाबा से हर एक ब्रह्मा वत्सों को यही अनुभव होता था कि बाबा यहां नहीं है, बाबा कहीं और है, बाबा की फरिश्ता स्टेज हर ब्राह्मण आत्माओं को अनुभव होती थी। और दूसरा बाबा से अनुभव क्या होता था, बाबा से भविष्य साक्षात्कार कि यही ब्रह्मा क्या बनेगा भविष्य में, मिचनो कृष्ण बनेगा, ऐसा अनेकों को साक्षात्कार होता था। तो इन सब का अनुभव का आधार क्या है, चिंतन है। तो अनुभूति की स्टेज में हमारी मन की भूमिका न की बराबर रहती है, हम उसी परम आनंद की अनुभूति में बीज रूप स्थिति कहें या बाप समान स्थिति कहें, कर्मातीत स्थिति कहें, हमारी अनादि जो स्वरूप है परम धाम में, वो हमारा जो स्वरूप है वो नेचुरल अनुभव होता रहे। और जब वो नेचुरल हमें अनुभव होता रहे, क्योंकि जो अनादि स्वरूप है परम धाम का वो सोचता स्वरूप नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं या नहीं हूं ये संकल्प भी नहीं है, मैं हूं ही आत्मा, वो फीलिंग रहती है। और जब हम इस फीलिंग में टिक जाते हैं, इस नशे में टिक जाते हैं, तब वो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, आत्मा के जो सातों गुण है, वो अनुभव में आने लगते हैं। आत्मा के सात गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो ऑटोमेटिक वो सातों गुण हमारे अनुभव में आने लगते हैं। पर इसका आधार क्या है, वो है हमारा चिंतन। हमारा चिंतन किस तरह का चलता है, जैसा चिंतन वैसा अनुभव। और चिंतन का आधार भी क्या है, चित्त। और चित्त किस आधार पर बनता है, चेतना के आधार पर बनता है। चेतना किसको कहते हैं, इसको कॉन्शियस भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं, ये बुद्धि के ही एस्पेक्ट है। बुद्धि को ही हम चेतना कहते हैं, जो 24 आवर्स जो कार्य करती है, वो कौन कार्य करती है, बुद्धि कार्य करती है। रात को हम सोते हैं तो भूख प्यास लगती है, वो किसको अनुभव होता है, बुद्धि को अनुभव होता है। तो चेतना अर्थात बुद्धि। तो जैसी मेरी चेतना होगी, अगर मेरी चेतना में असत्य है, देह है, देह की दुनिया है, देह के पदार्थ है, तो मेरा चित्त कैसा बनेगा, चित्त शांत रहेगा, चित्त मेरा अशांत होगा, चित्त में डर होगा, भय होगा, तो चिंतन कैसा चलेगा मेरा, नेगेटिव चिंतन चलेगा। और फिर आपको अनुभव कैसा होगा, आपको नकारात्मक चिंतन का अनुभव कैसा होगा, डर का, भय का, अशांति का, तनाव का, डिप्रेशन का, इन सब का अनुभव इस आधार पर होगा। और जितना आपको इन चीजों का आपको अनुभव होगा, उतनी आपकी आंतरिक शक्तियां और कम होती जाएगी, उतने आप कमजोर बनते जाएंगे। और जितने आप कमजोर बनेंगे, उतनी छोटी छोटी बातें भी आपको बड़ी अनुभव होने लगेगी। हम कहलाते तो हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सोचते बहुत है, छोटी छोटी बातों में हम क्या घबरा जाते हैं। कारण क्या है, हमारा चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। अब अगर हमें बाप समान बनना है, बहुत अच्छी प्रारब्ध बनानी है, तो एक बहुत अच्छा कोटेशंस है, मैं हर जगह ये बताता रहता हूं कि जिसका मन जितना शांत रहता है उसका भविष्य उतना ही उज्जवल बनता जाता है। और सारी साधना द्वापर से जो जितनी भी साधना होती आई है वो मन को कंट्रोल करने के लिए। अब हमें मन का संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है, मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीत सो जगत जीत। अब इसकी विधि क्या है? आज भी बाबा का वरदान था कि माया ये ड्रामा की नॉलेज के द्वारा, अचल स्थिति द्वारा माया जीत प्रकृति जीत पाओ। हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया कि आप कौन है, मैंपन का ज्ञान कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कौन है, शिव बाबा ही मेरा संसार है। और तीसरा जो ज्ञान दिया बाबा ने, ड्रामा का ज्ञान दिया। इन सब की जितना हम जीवन के अंदर अनुभव करते जाएंगे उतनी हमारी चेतना सत्य से ओतप्रोत होती जाएगी। हमारे दिन भर में इसी से कनेक्टेड हमारे सोच विचार चलते हैं और जिसके कारण हमारी संकल्प शक्ति वेस्ट होती जाती है। हमारी समृद्धियां तो श्रेष्ठ रहती है, कई बार हम अच्छे योग में बैठते हैं लेकिन हमारी सोच में व्यर्थ साधारण संकल्प वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, जिसके कारण हम श्रेष्ठ अनुभूति नहीं कर पाते। अगर श्रेष्ठ अनुभूति करनी है तो जो देह आवर्त में कई तरह की ऊपर नीचे की बातें आती है इसका संपूर्ण ज्ञान चाहिए। जो तीनों चीजों की बाबा ने हमें नॉलेज दी है, आत्मा की परमात्मा की ड्रामा की, कहां कब किसको यूज करना है, उसको यूज करके अनुभव में ला करके हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा कैसी हूं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मुझ आत्मा को न तो कोई औजार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकती है। ये ज्ञान है, जब ये ज्ञान मेरे जीवन में रहता है तो मेरे जीवन के अंदर डर भय खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब पेपर आते हैं देह से संबंधित, अगर आपको ये अनुभव नहीं है और कोई बीमारी का पेपर आया और आप हलचल में आ गए, आपको चिंता होने लग गई, डर होने लग गया, तो वो आपकी भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन नहीं पाएगी, आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि अब हमारे घर जाने का जो समय आ चुका है तो घर वही आत्मा चल सकेगी जो पवित्र होगी। तो इन सब बातों की नॉलेज चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से न्यारी एक आत्मा हूं। जब ये फीलिंग ये अनुभूति हमारे अंदर रहेगी तब हम जीवन में इस देह से संबंधित आने वाले पेपर से पास हो सकेंगे और उन पेपरों में हमारे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, सोच विचार नहीं चलेगा। जितना हम सोचते हैं कई बातों में हमारी सोच चलती है। जो बाबा ने कहा, अगर हमारा भाग्य का सितारा बुलंद करना है, चमकाना है, तो जितना आपका सोच के ऊपर कंट्रोल होगा, यानी असोचता की स्थिति होगी, तभी आपका भाग्य का सितारा चमकेगा। कितना गहरा मनोविज्ञान है उसमें। और हम छोटी छोटी बातों में सोच सोच के हम अपने भाग्य के सितारे को डिम कर देते हैं। भाग्य का सितारा तब चमकता है जब हम असोचता की स्टेज पर आ जाए। लेकिन सोच चलता है ना, पेपर आते हैं, बीमारी के पेपर आते हैं, कर्म भोग के पेपर आते हैं, चलता या नहीं चलता है, चलता या नहीं चलता है, चलता है ना। तो लेक ऑफ नॉलेज किसकी कमी है? ज्ञान की कमी है, अनुभव की कमी है। और कहा जाता है अनुभव कभी ये अनुभवी आत्मा कभी धोखा नहीं खाती है। आपने मम्मा का एग्जाम्पल सुना होगा, लास्ट टाइम पर मम्मा को कैंसर था, लेकिन मम्मा के साथ रहने वाली बहन को भी पता नहीं था और किसी भाई बहनों को भी पता नहीं था कि मम्मा को इतनी गंभीर बीमारी। सोचो उनकी स्थिति कैसी रही होगी, कैसे मम्मा ने भी कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की, कितना उन्होंने ये आत्मा का पाठ पक्का किया। और ये जब लास्ट पेपर आते हैं इस तरह के, तो अनुभव की अथॉरिटी के द्वारा ऐसे पेपर पर वो पास हो जाते हैं। ये है अनुभव की अथॉरिटी। जितना हमारे अंदर अनुभव होगा ना, उतना ये जो आने वाले माया के पेपर, प्रकृति के पेपर, एक अनुभवी आत्मा ही पास कर सकेगी। इसलिए बाबा ने हमें ये टाइम दिया है, ये आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, आप इसको यूज करते रहो। अगर आप सोचता स्वरूप में रहेंगे, जो बाबा ने अभी अव्यक्त महावाक्य चले है ना, जब कोई भाई अपनी परेशानी बताता है, समस्या बताता है, तो उसको हम क्या जवाब देते हैं? परिवर्तन कर लो ना, यही जवाब देते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी नकारात्मक संकल्पों को परिवर्तन करके सकारात्मक बनाना, तभी हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तित होंगे। अगर हम सोच में चले जाएंगे, समस्याओं के चिंतन में चले जाएंगे, परिस्थितियों के चिंतन में चले जाएंगे, तो और बुद्धि हमारी कमजोर हो जाएगी। और एक कमजोर बुद्धि वो अनुभव करने की पात्र नहीं बन सकती है। अनुभूति की स्टेज में तो हम तभी बैठ सकते हैं कि जब हमारा मन दिन भर की परिस्थितियों से भी उपराम रहे, आने वाली परिस्थितियों में हलचल में मन नहीं आए, सोचता स्वरूप में हम नहीं रहे। जो हुआ, जो आज बाबा ने वरदान में जो बताया कि जो हुआ अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, पर ये गोली स्वीकार होती है? होती है? नहीं होती है। हमारा उस चिंतन में ही समय चला जाता, सोच सोच के ही उसमें ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। इसीलिए हमारा बुद्धि कमजोर होती जाती है। ये बुद्धि का और मन का आपस में गहरा रिलेशन है। जितना आप किसी बात के ऊपर सोच चलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उतनी बुद्धि कमजोर होती जाती है। और जितना आप कम सोचेंगे, उतनी बुद्धि पावरफुल बनती जाती है। सारे खजाना जमा करने का आधार क्या है? वो है हमारी बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा हम अनुभव करके हम बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब का आधार क्या है? जैसी मेरी चेतना। अगर चेतना में ये तीन चीजें बैठा लो, चेतना अर्थात बुद्धि, आत्मा में कौन है, तो सारा मैं और मेरा का ही तो परिवर्तन है ना। परिवर्तन किसका करना, मैं और मेरे का, मैं कौन और मेरा कौन। जब भी मैं शब्द आप बोले तो मैं अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, और मेरा शब्द जब भी बोले मेरा अर्थात एक बाबा ही संसार है। और तीसरा, ड्रामा में जो कुछ होता है हर सीन को हर पार्ट को आप एक्सेप्ट करते जाओ, उसमें क्या और क्यों नहीं, मैं उसकी गहरे में नहीं जाओ, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जो हो रहा है वो कल पहले मुआफिक। ये रहस्य को जानकर जो आत्मा अपने मन को शांत रख देती है तो उस आत्मा की आंतरिक शक्तियां तेजी से बढ़ने लगती है, उसकी बुद्धि दिव्य बनने लगती है। समझदार वही है जो ज्यादा सोचता नहीं है। ये तीनों बातों का ज्ञान हमारी चेतना में कंप्लीट बैठा हुआ हो, मैं कौन, मेरा कौन और ड्रामा का, अगर ये सत्य ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है अगर मेरी चेतना में फिट होगा तो जैसी मेरी चेतना वैसा मेरा चित। अब मेरा चित कैसा होगा, कैसा होगा? आत्मा परमात्मा ड्रामा को अगर सामने लाए तो अब मेरा चित कैसा होगा, हर बात में हर परिस्थिति में हर समय मेरा चित शांत। ये ज्ञानी आत्मा की निशानी है। चित कभी भयभीत नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान है। इसीलिए बाहर की एक कहावत है, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, आफ्टर रियलाइजेशन विल बी चेंज। जितना हम तीनों का अनुभव करते जाएंगे ना उतना हमारा चित शांत होता जाएगा। चित यानी सब कॉन्शियस, और जितना चित मेरा शांत उतना मेरा चिंतन कैसा चलेगा, कैसा चलेगा, अच्छा ही चलेगा। जैसे अभी यहां आप बैठे हैं, कोई बात आपके घर पर हो गई तो पहले तो बहुत अप एंड डाउन हो जाते थे ना, अब कोई बात आई तो अब हम एक सेकंड में ड्रामा कर करके फुल स्टॉप, जो हुआ कल पहले मुआफी। इतना परिवर्तन शक्ति का हमारे अंदर वो यूज चाहिए। अगर हम परिवर्तन शक्ति को यूज नहीं करेंगे तो फिर हम समस्या में परिस्थितियों में हम बह जाएंगे, और जितना हमारा सोच चलेगा उतनी हमारी बुद्धि कमजोर होती जाएगी। तो हमारा अनुभूति का आधार क्या है, हमारा चिंतन, और चिंतन का आधार चित, और चित का आधार चेतना बुद्धि। बुद्धि में तीनों चीजें बैठानी है, आत्मा परमात्मा और ड्रामा। अब हमारी चेतना अगर सत्य से ओतप्रोत है तो चित शांत और चिंतन अच्छा चल रहा है, और चिंतन से फिर अनुभूति, क्योंकि अनुभूति का आधार क्या है, जैसा चिंतन जैसा संकल्प। अब मेरा चिंतन श्रेष्ठ है तो अनुभव कैसा होगा, अच्छा ही अनुभव होगा। मेरी बुद्धि में रह रह करके वो परम आनंद का सुखी अनुभव होगा, कोई भी सांसारिक सुख कोई भी सांसारिक प्राप्ति अब तुच्छ लगेगी, कोई भी आकर्षण पैदा नहीं होगा। इसीलिए जो योगी परम आनंद के रस में मगन रहता है उसके उस आत्मा की प्रकृति दासी बन जाती है। कितना गहरा मनोविज्ञान बाबा ने हमें बता दिया। तो जो आत्मा एक परम आनंद के रस में मगन रहती है उस आत्मा का भाग्य का सितारा उज्जवल बनने लगता है। बाबा के कई बार मुरलियों में यह आता है कि जो आत्मा परमात्म रस में परमात्म प्यार में मगन रहती है, बात वही है, अनुभव में रहना मगन रहना, उसके सामने समस्याएं माया आंख उठा करके भी नहीं देख सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बाबा के प्यार में, जो बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई है, अनेक खजाने दिए हमें ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, इन खजानों के अनुभव में अगर हम मगन रहेंगे तो हमारी बुद्धि ये बाहरी संसार में जाएगी नहीं, हमारी बुद्धि एक परमात्म प्यार में ही मगन रहेगी। और जितना हम परमात्म प्यार में मगन रहेंगे, अनुभूति की स्टेज में रहेंगे। ये अनुभूति की स्टेज क्या होती है कि एक बीज रूप स्टेज होती है, जैसे बीज में जाड़ समाया हुआ रहता है और वही बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो जब वो बीज प्रस्फुटित होता है तो उससे क्या निकलता है? तना निकलता है और उससे फिर फल फूल लता सब निकलने लगती है। तो इसी तरह अनुभूति की स्टेज इतनी पावरफुल स्टेज होती है जब हम बाबा के साथ परम धाम में, एक बाबा दूजा न कोई, इस अनुभूति में हम बैठ जाते हैं तो पूरे बाबा को यानी बाबा की सारी शक्तियों को हम अंदर समाहित कर लेते हैं। और उससे हमारा भविष्य प्रारब्ध कितना बन जाता है? भविष्य प्रारब्ध हम श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बन जाते हैं। इतना इस अनुभूति के अंदर इतना खजाना छिपा हुआ है। हम माया जीत प्रकृति जीत बन जाते हैं। तो अनुभूति की स्टेज का अर्थ है कि एक बाबा ही मेरा संसार है और कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करे। तो जितना हम इस परहेज में रहते हैं, इस स्टेज का अनुभव करने के लिए पहली पहली परहेज है, मेरा तो एक शिव बाबा ही संसार है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये परहेज अपने को रखनी पड़ेगी। अगर इस परहेज को अगर आप तोड़ते हैं, जैसे डॉक्टर अगर आपको कोई परहेज बताता है, चाहे कितनी भी अच्छी दवाई दे रहा हो, तो वो दवाई काम नहीं करेगी। परम आनंद का रस अनुभव करना है, बाबा से सर्व प्राप्ति अनुभव करनी है, तो पहली परहेज मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दूसरी परहेज, मैं हुई रचयिता इस शरीर का, मैं मालिक हूं, मैं रचना की वशीभूत कैसे हो सकता हूं? मैं रचयिता हूं न कि मैं रचना। तो जब हम इस नशे में रहते, मैं रचयिता हूं इस शरीर का, तो अपना रचयितापन नहीं भूलो, मैं कौन हूं? मैं रचयिता हूं। इस अनुभूति में रहो तो आपका भविष्य प्रारब्ध श्रेष्ठ बनती जाएगी। और तीसरा, जो भी हमारी लौकिक अलौकिक जिम्मेवारियां हैं, उन सब का बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बन जाओ। जितना हम डबल लाइट बनेंगे तब हम बहुत संगम योगी श्रेष्ठ अनुभव कर सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि में बोझ है, चिंता है, भारीपन है, तो वो आत्मा संगम योगी सुखों का अनुभव नहीं कर सकेगी। बुद्धिमान तो वही है जो अपना सारा बोझ बाबा को देकर हल्का बन जाए। जितना हम हल्के रहेंगे, हल्की चीज ही ऊपर जाती है, और ऊपर कौन है? शिव बाबा है। तभी हम बाबा से श्रेष्ठ प्राप्तियां कर सकते हैं, श्रेष्ठ अनुभूतियां कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हमें अटेंशन में रखनी है। पहला, एक बाबा दूजा न कोई, सेकेंड मैं रचयिता हूं, और तीसरा अपना बोझ सब बाबा को देकर। फिर देखो आपको इतनी सुंदर अनुभूतियां होने लगेगी, आपका थोड़े समय में ही मन तृप्त होने लगेगा, भरपूरता का अनुभव होने लगेगा, और आपको सांसारिक आकर्षण, सांसारिक पदार्थ तुच्छ लगने लगेंगे, और आपकी बुद्धि, आपकी चेतना एक परम आनंद के रस में डूबी हुई होगी। फिर आपके द्वारा जो दिखाई देगा औरों को, वो बाबा ही दिखाई देगा, बाबा के साक्षात्कार होने लगेंगे, साक्षात्कार की धूम मच जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने अनुभूति के द्वारा, अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करके अपने जीवन को बाप समान बना सकते हैं और अनेक आत्माओं को आए हुए परमात्मा का साक्षात्कार करा करके उनका भी भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इन सभी का आधार क्या है? अनुभूति। बहुत श्रेष्ठ खजाना है संगम युग का। तो इस तरह से अपनी अनुभूति करने के लिए लास्ट बात, जितना हम कम सोचेंगे और जितना अच्छा श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, अनुभूति किसके ऊपर डिपेंड है? चिंतन के ऊपर। जितना कम और जितना श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, शुभ कामना शुभ भावना सबके प्रति रखेंगे, उतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छी अच्छी अनुभूतियां आप कर सकेंगे। तभी आपके तमोगुणी संस्कार परिवर्तित होकर के सतोगुणी संस्कार बन जाएंगे, और जब आपके संस्कार सतोगुणी बन जाएंगे तो यही हमारे सतोगुणी प्रकंपन चारों तरफ फैल करके ये तमोगुणी संसार का परिवर्तन कर एक नई सृष्टि के निमित्त आप बन सकेंगे। ओम शांति।
तेरे दरबार में प्यार से भर गया।